गोपियों, ये आत्मा है, ये ज्ञानमय है, ये आत्मा है, ये शुद्ध है, इसमें कभी संयोग नहीं और कभी वियोग नहीं, क्योंकि यह इतना व्याप्त है, घन रूप से व्याप्त है, माने ठोस है, इसमें न तो किसी का प्रवेश हो सकता है और न ही इसमें से कुछ निकल सकता है, क्योंकि निकलेगा तो कहीं अवकाश होगा तो उसमें जाएगा तो अवकाश भी नहीं है। ऐसा मैं ठोस हूं, गुणों से रहित हूं, जागृत स्वप्न और सुसुक्ति पे सुसुक्ति के द्वारा जाना जाता हूं, माने जागृत में जो है वही सुसुप्ति में है और जो स्वप्न को देखने वाला है वही जागृत में है। देखो कोई आदमी कहता है कि भाई तुमसे बात कर रहा था ना मैं, फिर मुझे नींद आ गई तो मुझे स्वप्न आया तो मैं हरिद्वार चला गया। अब हरिद्वार गया तो वहां बहुत बड़ा भारी कुंभ का मेला लगा हुआ था, उस कुंभ में बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष आए हुए थे, उन महापुरुषों का सत्संग चल रहा था, उस सत्संग में एक जगह गीता का सत्संग चल रहा था, एक जगह भागवत का चल रहा था, एक जगह ब्रह्मसूत्र का विवेचन चल रहा था, ऐसे संत महात्मा अलग अलग जगह सब उस सत्संग को सुन रहे हैं। मैंने गंगा जी में स्नान किया, सत्संग सुना और उनके दर्शन किए, इतने में ही मेरी आंख खुल गई। ऐसा कोई स्वप्न को सुनाता है तो ध्यान देवे कि जो पहले जाग रहा था वही स्वप्न को देख रहा था और जो स्वप्न को देख रहा था वही स्वप्न से अलग होकर स्वप्न का वर्णन कर रहा है। तो जागृत स्वप्न और सुसुप्ति इन तीनों वृत्तियों से उस चेतन तत्व का ज्ञान होता है, वो मैं ही हूं। मन को और इंद्रियों को, इन सब को जो झूठा समझता है, इनके द्वारा जिनकी प्रतीति होती है वे सब असत है, ऐसा जो मानता है वो वास्तव में नींद से जग जाता है। इसलिए बड़े बड़े ऋषियों ने सारी साधनाओं का सार यही बताया है, सारी तपस्याओं का सबका सार यही कि भाई ये सारा संसार स्वप्न के समान मिथ्या है। इतना ही अंतर है कि स्वप्न तो जागने के बाद पता चलता है कि मिथ्या है और ये संसार आंख बंद करने के बाद पता चलता है कि मिथ्या है, लेकिन है जरूर मिथ्या, इसमें संदेह नहीं है। और हे गोपियों, तुम मुझसे दूर हो इस बात को देखकर तुम्हारे मन में कभी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि सदा आत्मा रूप से तुम्हारे पास हूं ही और तुम मुझे याद कर लिया करो। देखो उस रासलीला में बहुत सी ऐसी गोपियां थी जिनको आने नहीं दिया था, उनके परिवार वालों ने अपने अपने कक्ष में ही अवरुद्ध कर लिया, मकान में उनको जो है रख लिया, आने नहीं दिया, लेकिन वे भी ध्यान करके मुझे प्राप्त हो गए। तो अब आप लोग मेरा ध्यान करते रहो। और हे गोपियों, पास में रहने पर इतना प्रेम नहीं होता है जितना दूर रहने पर प्रेम होता है, इसलिए अपनी लीलाओं को तुम गाते रहो, मेरा नाम लेते रहो और बहुत शीघ्र ही तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, इसमें संदेह की बात नहीं है। गोपियों ने यह संदेश सुना, संदेश सुनकर के और फिर उद्धव जी से कहा, उद्धव जी आप ये बताओ कि अब वो मथुरा में कुशल पूर्वक तो है, ये नहीं कहा कि हाँ हमने आपका संदेश सुन लिया, अब हम हमारे वियोग की अग्नि है उसको दूर कर लिए, ये कर लिया वो कर लिया, कुछ भी गोपियों ने नहीं कहा। अब गोपियां जब ज्ञान की चर्चा आ गई तो वापस व्यवहार की जगत में आ रही है। क्या हो उद्धव जी, मथुरा में वो आनंद से तो है ना, कहीं किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई कष्ट तो नहीं है? अच्छा बताओ उद्धव जी, मथुरा के स्त्री और पुरुष उनके साथ प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं? इतने में गोपी बोलती है कि अरे ऐसी प्रेम की बात ये थोड़े ही बताएंगे, ऐसे प्रेम की बात ये बता दें तो फिर ये हमारे पास आए ही क्यों? अरे प्रेम कोई मथुरा के स्त्री और पुरुष नहीं करते, रति विशेषज्ञ है वो कृष्ण है, वो ऐसा प्रेम का विशेषज्ञ है कि वो खुद ही प्रेम करता है। और नानुबध्येत तद्वाक्ये विभ्रमैश्चानुभाजित है, और जब वो तिरछे नेत्रों से देखता है और जब वो मीठा बोलता है और वो अपने चेहरों से तरह तरह से शरीर से तरह तरह से लटके करता है। है कोई ऐसा माई का लाल कि जो उन सब का चिंतन करे और उसमें न फंसे, अपने आप फंस जाते हैं, इसलिए ये पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा उद्धव, तुम तो एक बात बताओ कि वो कभी आपको ऐसा कहता है कि हमारी ऐसी ऐसी रास लीलाएं हुई थी, उस रास लीला को वो याद करता है क्या? अरे उद्धव क्या बतावें, आप तो थे नहीं, ऐसी दिव्य वो लीला हुई थी, हम तो सोच रहे हैं कि हम कहां थी और कहां आ गई। ऐसी तो वो बढ़िया रात्रियां थी, न तो सर्दी थी न गर्मी थी, न अंधेरा था, पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश था। वृंदावन में सब ये फूल खिले हुए थे, उनकी बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी। उस समय में हमने ये रास किया था उनके साथ, हमारे पैरों में आभूषण थे, उनके ध्वनियां हुई थी, क्या बतावे। अब वो रास कैसे हुआ, कैसे हमको नचाया उसने और कैसे हम नाचे, ये वही जान सकते हैं। अच्छा क्या वो यहां आएगा तो सही, हम लोगों से मिलने के लिए कभी आएगा तो सही? अच्छा बताओ एक बात और पूछते हैं हम आपसे, अब कृष्ण के पास में कई राजाओं के विवाह का प्रस्ताव तो आता ही होगा ना, उस समय में वो हां करता है कि ना करता है, जरा हमको बताओ। ओहो हमसे अब वो थोड़ी स्नेह करेगा, ये बात वो थोड़ी बताएंगे और आप थोड़ी बताओगे, क्योंकि कृष्ण भी ये देखता है कि वनवासियों के बीच में ये बात क्यों करें, हमारे पास तो बड़े बड़े राजा लोग आ रहे हैं, और आप भी ये बात क्यों करेंगे हमारे बीच में कि कृष्ण का विवाह किस कन्या के साथ होने जा रहा है, आप ये बात क्यों कहेंगे। दूसरी सखी बोलती है कि अरे कृष्ण की आशा छोड़ दो, क्यों तुम कृष्ण की आशा रखती हो, अरे बिचारी वो पिंगला, उसका जीवन कितना गंदा था, भले ही उसका जीवन गंदा हो, बात तो उसने बड़ी अच्छी कही है, क्या कि भाई आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, संसार में किसी से भी आशा रखना है ये बहुत बड़े भारी दुख को निमंत्रण देना है, और संसार से निराश होना है ये महान आनंद की प्राप्ति का साधन है, इसलिए कृष्ण से निराश हो जाओ, कोई आशा मत रखो उनसे। तत् जानती नाम न कृष्णे, क्या बतावें। ए उद्धव हम बातें तो बहुत लंबी चौड़ी करते हैं, शास्त्र की बात, सुनी हुई बात, और भी कई दूसरी बात तो करते हैं, पर कृष्ण से आशा हमने बहुत बार प्रयत्न किया कि छोड़ दें, लेकिन कृष्ण की आशा हमसे छूटती नहीं है, कौन छोड़ सकता है। लक्ष्मी जी की हिम्मत नहीं हुई, औरों की हिम्मत नहीं हुई, और हमारी दशा क्या हो रही उद्धव, जो वृंदावन हमें बहुत प्रिय लगता था यही वृंदावन हमको अब खाने के लिए दौड़ता है। जब हम गोवर्धन पर्वत को देखती है तो बस वो कृष्ण याद आता है। कभी भूली भटकी हम यमुना नदी के किनारे आती हैं तब भी यही कृष्ण याद आता है। जंगल में जिन वृक्षावलियों के नीचे हम बैठे थे, उनसे बातचीत की थी, वहां तो और ज्यादा कृष्ण का प्रेम हमको याद आता है। बार बार ये सारा का सारा गोकुल हमको कृष्ण के प्रेम में डुबा देता है। यहां हमारे साथ बंसुरी बजाए थे, यहां हमारे साथ खेले थे, यहां वो दौड़े थे, यहां हमको ऐसे बोले थे, यहां खड़े होकर हम सबको आवाज लगाई थी, ऐसे ऐसे जब उसके स्थल देखते हैं तो हे उद्धव इस वृंदावन में हम कैसे रहे, छटपटा रहे हैं। इसलिए हम तो क्या करती हैं, ज्यादा बाहर निकल करके ज्यादा घूमती भी नहीं है, हम तो सब एक साथ इकट्ठी होकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेवा
हे नाथ नारायण वासुदेवा।
इस प्रकार से हम लोग तो आपस में मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन किया करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियों की ऐसी बात सुनी, उद्धव जी ने गोपियों का ऐसा विलक्षण प्रेम देखा और उद्धव के प्रति भी श्री कृष्ण का ऐसा विश्वास गोपियों ने देखा तो उन्होंने उद्धव की पूजा की। उद्धव जी महाराज बहुत दिनों तक वृंदावन रहे। वृंदावन के लोगों से पूछा कि यहां कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं की और किस किस जगह की थी, जरा हमको बताओ। तो वहां गोपियों ने और कृष्ण के और मित्रों ने श्री कृष्ण की लीला के जो जो स्थल थे सब बताए। जब तक श्री कृष्ण के दूत उद्धव जी महाराज नंद जी के इस ब्रज के अंदर रहे, तब तक उनका मन ऐसा उस ब्रज में लगा रहा मानो कृष्ण से मैं दूर हूं ही नहीं। बहुत लंबा चौड़ा समय उनका एक क्षण में बीत गया, कारण कि सुबह श्याम हरदम कृष्ण की चर्चा चलती थी। उद्धव जी उन नदियों के किनारे गए, जंगल में घूमे, पर्वत पर गए, कंदराओं में गए और उन कुसुमित वृक्षों के पास में गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और इस प्रकार से गोपियों का श्री कृष्ण में प्रेम देखा। उद्धव जी बड़े प्रसन्न हो गए और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मन, एता परम तनुभृतो भुवि गोपवद्भो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढभावा वांसन्ति यद्भवभिवो मुनयो वयंच किं ब्रह्म जन्मभिरनंत कथारसस्य। देखो कहां तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों में जो व्याप्त रहने वाले सब के जो स्वामी है, और कहां बिचारे ये गोपियां जो पृथ्वी के ऊपर ये सामान्य ग्रामीण शरीर धारण करने वाली, ऐसे कृष्ण के अंदर भी इनका ऐसा रूढ़ भाव है, ऐसा प्रेम भाव है। हम सब संसार से डरे हुए और दूसरे ऋषि मुनि भी यहां जिन चरण कमलों को चाहते हैं और जिस प्रेम को चाहते हैं वो प्रेम हम लोगों को तो नहीं मिला और इन गोपियों को ऐसा प्रेम मिला है। वस्तुतः उस अनंत भगवान का जो रस है वो कथा रस है, उस कथा रस के सामने बहुत ऊंचे कुल में जन्म मिल जाए माने ब्राह्मण कुल में जन्म मिल जाए, लेकिन वो कथा रस न मिले तो ब्राह्मण जन्म की कोई सार्थकता नहीं। अथवा ब्रह्मा जी के समान आयु मिल जाए लेकिन ये अनंत का कथा रस न मिले तो भी उसकी कोई सार्थकता नहीं है। अतः सबसे बड़ी चीज तो भगवान का कथा रस है, वो कथा रस इनको कैसे मिला है, गोपियों को कैसे विलक्षण ढंग से मिला है। ये बिचारी जंगलों में रहने वाली आचार विचार से सर्वथा शून्य, शास्त्रों का इनको ज्ञान नहीं कि कौन सा किस प्रकार से आचरण कब करना चाहिए, कोई इनको विधियों का ज्ञान नहीं, लेकिन कहां परमात्मा में ऐसा विलक्षण प्रेम। इससे सिद्ध होता है कि भगवान एक ऐसे हैं कि जिनको कोई जाने या न जाने, लेकिन भगवान के साथ जब प्रेम होता है तो उसका कल्याण होता ही है। श्रेयस तनोति, भगवान उसका कल्याण करते ही है। जैसे कोई बीमार आदमी दवाई को नहीं जानता कि दवाई किन चीजों से बनी है, परंतु दवाई लेता है तो उसकी रोग से मुक्ति होती है, इसी प्रकार से किसी भी भाव से भगवान का कोई भजन करे, भगवान को जाने भी नहीं, तो भी उनसे प्रेम करे, तो भगवान है ही ऐसे कि वे अपनी शक्ति से उसका कल्याण करते ही हैं। नायम श्रीओंग उवनितान तरते प्रसाद है, ऐसा विलक्षण कृपा भाव तो लक्ष्मी के ऊपर भी नहीं देखा गया है। निश्चित है लक्ष्मी जी के गोद में भगवान चरण रखते हैं, लक्ष्मी जी को भगवान ने अपने वक्षस्थल में आश्रय दे रखा है, लक्ष्मी जी को भगवान बैकुंठ में रखते हैं। नहीं नहीं, भगवान तो लक्ष्मी जी के सहचर है, साथ साथ रहते हैं, रहो भले ही, लेकिन लक्ष्मी के ऊपर वो कृपा नहीं की है जो भगवान ने गोपियों पर कृपा की है, वो कृपा नहीं की देवताओं पर भी जो कृपा गोपियों पर की है। वो दिव्याति दिव्य रास उत्सव है जिसमें भगवान ने अपना विलक्षण कृपा भाव इन गोपियों पर रखा है। उस समय में गोपियों का हाथ अपने हाथ में लिया है, गोपियों की प्रसन्नता के लिए भगवान नाचे हैं, और गोपियों के लिए भगवान कितनी संख्या में हो गए हैं, एक अद्वितीय होकर जितनी गोपियां उतने रूप बनाए, और स्वयं आत्माराम होकर गोपियों को उन्होंने आनंदित किया है। ये जो गोपी प्रसाद है, गोपियों पर जो कृपा भाव है, ऐसा रास के द्वारा जो व्यक्त किया है, वो तो भाई लक्ष्मी के ऊपर भी ऐसी कृपा नहीं की है। इसलिए हे प्रभु, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौ षधीनाम यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथञ्च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृज्ञाम। कहते हैं कि ऐसे गोपियों के चरणों की धूलि जिन वृक्षों के ऊपर गिरे, जिन लताओं के ऊपर गिरे, हे प्रभु हमको तो इस वृंदावन की कोई लता बना देना, कोई वृक्ष बना देना कि हम उन चरण धूलि से पवित्र होते रहे। हम मुक्ति नहीं चाहते, हम आपका वैकुंठ लोक नहीं चाहते, हम आपके लिए कोई और दूसरा रसातल का लोक नहीं चाहते, हम चाहते हैं इस वृंदावन में कोई रूखड़ा बन जाए, कोई लता बन जाए, ताकि गोपियों की चरण धूलि हमारे पर गिरती रहे और हम पवित्र हो जाएं। ये चरण धूलि सामान्य नहीं है, इस चरण धूलि को तो प्राप्त करने के लिए सारे के सारे वेद लगे हुए हैं, सब के सब ऋषि मुनि लगे हुए हैं, और फिर भी वे प्राप्त नहीं कर सकते, और इसको केवल अपने आत्मीय लोगों से प्रेम छोड़ देने मात्र से गोपियों को ये चरण कमल मिल गए हैं। इसलिए हम तो इन चरणों को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहते, लता बना दो, वृक्ष बना दो, वो हमें मंजूर है, लेकिन गोपियों की चरण धूलि को छोड़कर हम कहीं नहीं रहना चाहते। ये वे गोपियां हैं कि जिन्होंने भगवान का वो चरण कमल रास के उत्सव में अपने शरीर के ऊपर रखा, कि जिनको बड़े बड़े योगेश्वर लोग अपने हृदय में रखा करते हैं, और उसी चरण कमल को प्राप्त करके इन्होंने अपने संसार की आदि व्याधि सबको त्याग दिया और उस प्रेम के अंदर ये डूब गई। धन्य ये गोपियां जो इस ब्रज के अंदर इस कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में लेकर के जी रही हैं। और इतना ही नहीं, अभी उद्धव जी कह रहे हैं कि वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। हम इन गोपियों के चरणों को बारंबार प्रणाम करते हैं, इनके चरण धूलि को प्रणाम करते हैं कि जिनकी आज ये पवित्र गाथा भगवान के साथ जुड़ी है, और इन्हीं गोपियों की कथाओं को, श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई कथाओं को जो सुनते हैं, सारे त्रिलोकी का मैल है, दोष है, वो सब का सब बह जाता है और सारी त्रिलोकी पवित्र हो जाती है। इस प्रकार से गोपियों से आदेश लेकर, यशोदा जी से और नंद जी से आदेश लेकर, अब उद्धव जी महाराज वहां से रवाना हुए। उद्धव जी रथ में बैठे, उस समय में रथ के पास आकर रथ के डंडे पकड़ करके नंद बाबा कहने लगे, देखो उद्धव, हमारी कृष्ण से कोई इच्छा नहीं है, हम तो एक ही बात जानते हैं कि हमारी मन की वृत्तियां कृष्ण में लगी रहे, हमारी वाणी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कहती रहे और हमारा कर्म ये भी कृष्ण के लिए होता रहे। हमारे शरीर से हम बार बार थोड़ी थोड़ी देर में उसको प्रणाम करते रहे, यही हम चाहते हैं। हमारे कर्मों के कारण हमें न जाने कहां कहां भटकना पड़े, कोई एक बात नहीं है। जहां भी हम भटके भटकते रहे उसकी चिंता नहीं है। श्री कृष्ण के अंदर हमारा प्रेम रहे, बस ये हम चाहते हैं। तरह तरह के पदार्थ नंद जी ने कृष्ण को देने के लिए उद्धव जी को दिया। गोपियां भी चारों तरफ उस रथ को घेर ली और कहने लगी, हमारा संदेश कृष्ण से बोलना, हमारा संदेश कृष्ण से बोलना। उद्धव जी महाराज वहां से रवाना हुए। जो उद्धव जी पहले सोचे थे कि मैं इनको एक अखंड ब्रह्म ज्ञान दूंगा, वे ही अब उद्धव जी महाराज उन गोपियों से ज्ञान लेकर के रवाना हुए हैं, तो टाप टाप रो रहे हैं। उद्धव जी महाराज रोते बिलखते आकर कृष्ण के पास बैठ गए। कृष्ण भगवान के सामने आए। कृष्ण जी ने कहा, उद्धव, बड़े हंसते खेलते हमने तुमको भेजा था, तुम तो रोते बिलखते आए हो, बात क्या है? तुम तो अपने स्वरूप में स्थित हो, एक अद्वितीय, अपने स्वरूप के अलावा किसी की सत्ता नहीं, तो किसके लिए रोना, किसके लिए हंसना? तुम ही तो सब कुछ हो, सुख में भी तुम हो, दुख में भी तुम हो, इन दोनों से अलग भी तुम हो, तुम्हारी तो महिमा है, तुम रोते क्यों हो, क्या बात हुई? उद्धव ने कहा कि हे कृष्ण, इस संसार में तुम भक्तों की जो उपेक्षा करते हो, इस बात का हमारे मन में बड़ा दर्द है। क्या बात है? देखो, बिचारी गोपियां इतने विलाप कर रही हैं, इतनी दुखी है, जब से आप मथुरा आए हो, क्या आप एक दिन भी रथ लेकर के वहां जा नहीं सकते और उनसे मिल नहीं सकते? बहुत निष्ठुर हो गए हो। भगवान ने कहा, उद्धव जी, कोई और चर्चा छेड़ो। क्या चर्चा छेड़े? आप अपने मां बाप से नहीं मिल सकते, सखाओं से नहीं मिल सकते, आप उन गोपियों से जाकर नहीं मिल सकते, इतने निष्ठुर क्यों हो? भगवान ने कहा, उद्धव, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बताने की होती हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बताने की होती हैं। कि नहीं महाराज, इसके विषय में आपको बताना होगा। आप तो सबके साथ प्रेम करने वाले और अपने प्रेमी का एक भी आंसू आप सह नहीं सकते हो। वहां देखो, बेचारा सारा ब्रज रो रहा है, आप मथुरा में बैठे कैसे हो, आपको यहां नींद कैसे आती है? कि उद्धव, यदि यही वाक्य मैं तुम्हारे सामने बोलता तो तुम मुझे कहते कि देखो, कृष्ण की अभी ब्रज में आसक्ति नहीं छूट रही है, और जब तुम ब्रज में जाके आए हो तो तुम हमारे गोपियों की और नंद बाबा की, यशोदा जी की जो प्रीति की बात कह रहे हो, यही बात बताने के लिए मैं नहीं गया। दूसरी बात और है कि देखो, एक बात ध्यान में रखो कि जिसमें ज्यादा प्रेम होता है वो पहले मिलता है, या जिसमें ज्यादा प्रेम होता है वो बाद में मिलता है? बताओ, इसमें बात क्या है? कि महाराज, जिसमें ज्यादा प्रेम होता है वो पहले मिलता है। तो देखो, आपको मैंने भेजा है कि उन्होंने कोई दूत बना के यहां किसी को भेजा है? मैंने आपको दूत बना के भेजा, आज तक ब्रज का कोई भी दूत मेरे पास नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्या बात है? देखो उद्धव, असली दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम मैं करता हूं, और मेरे दिए हुए प्रेम के कारण से वो अगले प्रेम करते हैं। जैसे सूर्य से सब दीपक जगते हैं, और दीपक के प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जाता, लेकिन प्रकाश की शक्ति दीपक से आती है तो अंधेरे में वो प्रकाश करता है। इसी प्रकार से गोपीगत प्रेम वो मेरा प्रेम, नंदगत प्रेम वो मेरा प्रेम, यशोदागत प्रेम वो मेरा प्रेम, मेरे ही प्रेम से वो प्रेमी है। और उद्धव, देखो, मैं अपने भक्तों को कितना चाहता हूं, कितना याद करता हूं। चलो, अब थोड़ा मथुरा के अंदर घूम आते हैं, जरा मथुरा के अंदर घूमे, देखें अपने प्रेमियों से मिलके आते हैं। उद्धव जी को साथ में लिया और सबसे पहले भगवान उस कुब्जा के घर पर गए। उद्धव जी चकित रह गए कि महाराज, ये तो अभी कृपा प्राप्त की थी और इसके घर आप पहले जा रहे हैं, लेकिन देखा कि भाई, भगवान सर्वात्मा है, भगवान सबको देखने वाले हैं, सर्वदर्शन है, माने गोपियों को नहीं देखते हूं ऐसी बात नहीं है। उद्धव जी का दिमाग बदल गया ये गोपियों से प्रेम करते हैं, इस बात का ज्ञान इस बात से लगता है, इस बात का ज्ञान इससे होता है कि ये उस कुब्जा के घर में गए हैं, उद्धव जी साथ में है, भगवान उद्धव जी को साथ में लिए हुए के चलो भाई हमारे भक्त के घर पर चलो कि चलो। अब वे कुब्जा के घर पर आए, कुब्जा ने बहुत उनका स्वागत सत्कार किया, स्वागत सत्कार करके ऊंचे आसन पर उनको बैठाया। कहते हैं उस समय में बड़ी अच्छी सुगंध आ रही थी उस महल में, बड़ा अच्छा अगुर है, धूप है, इनसे सारा महल सुवासित था। भगवान अंदर गए, उद्धव जी को साथ में लिए, वो अपने आसन से खड़ी हो गई और जात संभ्रमा, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे कृष्ण अभी आए हैं, उद्धव जी को साथ में लेकर आए हैं, मित्रों को साथ में लेकर आए हैं, पहले कुछ हमको सोचना ही नहीं थी, अकस्मात आए हैं, बड़ा उसको आश्चर्य हुआ। और फिर ऊंचे आसन पर उनको बैठाया, भगवान ने कहा उद्धव जी आप हमारे यहां बराबर में बैठो, लेकिन भाई ऊंधो सूंधो हो गयो सुन गोपियन को ज्ञान। पहले उद्धव जी महाराज चाहे जैसा बर्ताव कर लेते थे, लेकिन जब गोपियों से उनका उनको प्रेम मिला है, उस प्रेम का जब पाठ पढ़ करके आए, तो उनका कहा कि नहीं भाई भगवान तो भगवान की जगह रहेंगे। वहां पर वे नीचे आसन पर बैठ गए, उर्व्याम अभिमृश्य चासनम, जहां बैठने के लिए भगवान ने कहा था उसको तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया और जमीन पर एक आसन पर बैठ गए। कृष्ण भगवान वहां उस कुब्जा के घर पर रहे, बड़ा सुंदर वो घर है, तरह तरह की मालाओं से सुसज्जित है, तरह तरह के अलंकार वहां है, और वो कुब्जा अच्छे अच्छे कपड़े पहनी हुई, आभूषण पहनी हुई भगवान माधव को देखी है तो आहा उसका मन भगवान माधव में अटक गया कि ओह त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण कितने श्रेष्ठ हैं। मनी मन से उनको अपना स्वामी मान लिया, पति मान लिया और अपना जीवन सार सर्वस्व उन्हें ही मान लिया, अपने आप को उन्हें ही अर्पित कर दिया, ऐसा उसका प्रेम श्री कृष्ण के साथ। अब आज अपने महल में पहली बार मिलना हो रहा है तो नव संगम रिया, पहले प्रेम के अंदर बहुत वो लज्जाशील है। और उस समय में भगवान श्री कृष्ण भी वहां उनसे बड़े प्रेम से मिले हैं, उनकी पूजा को उन्होंने स्वीकार किया है और हर तरह से कुब्जा को उन्होंने प्रसन्न किया है। और वो श्री कृष्ण भगवान तो कैवल्यनाथ हैं, मुक्ति देने वाले हैं, प्रेम देने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण का उन्होंने अंगराग लगाया तो अंगराग ही स्वयं कृष्ण के अंगों को प्राप्त करके आज सफल हो गया। और उसके बाद उस कुब्जा ने कहा कि हे रमणनाथ आप कुछ दिन यहां और रहो, रमास्व नोत्सहे त्यक्तुम, आपको मैं छोड़ नहीं सकती हूं, आपका वियोग मैं सह नहीं सकती हूं, कृष्ण आप हमारे इसी महल के अंदर रहो। तो भगवान ने कहा देखो फिर मिलते रहेंगे, तुम्हारी जो मन की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी, अर्थात तुम सदा ही मुझे अपने पास देखना चाहते हो तो ये तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। देखो मैं कभी किसी से दूर तो होता ही नहीं हूं, सबके पास में हूं, अतः तुम अपने पास में मुझे पालोगी। इस प्रकार से कहकर के उद्धव आदि को साथ में लेकर भगवान वहां से रवाना हो गए। और अब वे अक्रूर जी के घर जा रहे हैं, बलराम जी साथ में है, उद्धव जी साथ में है। अक्रूर जी के घर भगवान पहुंचे तो अक्रूर जी तो अपने आसन से खड़े होकर भगवान को ऊंचे आसन पर बैठाए, बलराम जी की भी पूजा की, उद्धव आदि की पूजा की, और उसके बाद भगवान के चरणों को धोकर के अपने सिर के ऊपर रखा, तरह तरह से फूल से चंदन से उनकी पूजा की और कहने लगे कि महाराज ये पापी कंस मारा गया तो हम सबके घरों में आपकी पूजा चालू हो गई। भवद्व्याम उद्धृतम कृच्छ्रात् दुरंताच्च समेदितम, हमारा घर गृहस्थ तो एकदम इस कंस के राज्य में पाप के अंदर डूबा हुआ था, आपने हमारी सारी बस्ती को पवित्र कर दिया है। और हे बलराम श्री कृष्ण आप दोनों प्रधान और पुरुष हो, संसार के कारण हो, आपके बिना कुछ भी, भवद्व्याम न बिना किंचित, आपके बिना कहीं कुछ भी नहीं है, न कोई अच्छा बुरा ऊंचा नीचा, जो कुछ है वो आप ही से है, आप ही विश्व को बना करके तरह तरह के रूप धारण करते हैं, जैसे सोना ही कंगन बनता है, सोना ही कंठा बनता है, सोना ही लौंग बनता है, सोना ही नथ बनता है, सोना ही करधनी बनती है, सोना ही नूपुर बनता है, सब कुछ सोना ही सोना है, ऐसे सारा विश्व आप ही का रूप है और आप इसमें सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आप किसी के भी अधीन नहीं है। बनाते हुए और पालते हुए और अपने में लीन करते हुए आपको कोई किसी प्रकार से बाधा नहीं दे सकता। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की सहायता से आप संसार का ये काम करते हैं। महाराज आश्चर्य है, गुणों से अतीत है, निर्गुण है और फिर भी आपने इन गुणों को कितना महत्व दिया है। सत्वगुण को कहा कि भाई हम तुम्हारे द्वारा संसार का पालन करेंगे, रजोगुण को कहा कि तुम्हारे द्वारा हम संसार को पैदा करेंगे, तमोगुण को कहा कि तुम्हारे द्वारा हम संसार को लीन करेंगे। महाराज ये गुण तो बेचारे गुणहीन थे, इन गुणों में गुणत्व आपके कारण से आया है। ओहो, इतना सब करते हुए भी महाराज आप किसी उपाधि से बंधते नहीं है। तरह तरह से आप जीव रूप से बने हुए हैं, कितने कितने शरीर आपने जीव रूप से धारण किए हैं, फिर भी आप देहादि से बंधे हुए नहीं, अलग के अलग हैं। न आपकी उत्पत्ति है, न आपकी मृत्यु है, न आपका बंधन है, न आपका मोक्ष है। कोई ये समझते हैं कि ये बंधन है और ये मोक्ष है तो केवल एक अज्ञान से उठी हुई कल्पना और कुछ नहीं है। जैसे नेत्र के पास में हम अंगुली रखें तो एक ही चीज दो रूप से दिखती है, इसी प्रकार से अज्ञान को जब ये जीव स्वीकार करता है तब ये कल्पना उठती है ये जीव है और ये परमात्मा है, ये बंधन है और मोक्ष है। अज्ञान नहीं रहता तो जीव और परमात्मा ये भेद भी वहां नहीं रहता है। आप ही ने जगत के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए वेद बनाए हैं, पुराण आप ही से निकले हैं। पाखंडी लोगों के द्वारा जब उस पुराण के अंदर वर्णित जो सार है वो सार का जब नाश होता है, वैसे तो पुराण पुरुषोत्तम आप है ही, जब आपकी बनाई हुई मर्यादा नष्ट होने लगती है तब आप तरह तरह से अवतार ले लेते हैं। आप वसुदेव जी के घर में इसीलिए अवतार लिए हैं कि कंस आदि पापियों के भार से पृथ्वी बहुत आक्रांत हो चुकी है और अब आप हजारों हजारों योद्धाओं को सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं के बीच में लाकर उनका भी नाश करेंगे। हमारा घर पवित्र हो गया, हमारे देवता पवित्र हो गए, हमारे पितर तृप्त हो गए, आपके चरण कमलों की पवित्र, आपके चरणों का जो जल है उस जल के द्वारा, गंगा जी के द्वारा जैसे सारा संसार पवित्र होता है, इसी प्रकार से आज मेरा घर भी आपके चरणों के चरणों दग से, अर्थात अब ये जो गंगा मेरे हाथ में ही है, चरणों का जो जल है वही तो गंगा है, वो गंगा आज मेरे हाथ में है, आपने सबको पवित्र कर दिया है। संसार में ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष होगा कि जो सब प्रकार से अभय देने वाले आपके चरण कमलों को छोड़ करके और आप जैसे कृतज्ञ को छोड़ करके और किसी के साथ प्रेम करेगा। सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो भी कामान आत्मानमप्युपचया पचयौ नयस्य। आप जैसा संसार में कोई दूसरा दानी नहीं है। दूसरे लोग तो अपनी चीज दिया करते हैं और आप अपने आप को ही दे दिया करते हैं। जिस अपने आप में कोई कमती बेसी नहीं होती, कोई घटती बढ़ती नहीं होती, ऐसे स्वरूप को आप दे देने वाले हैं। देखो ये अक्रूर जी की कथा है, ये अक्रूर जी की कथा याद रखना, वहां उन्होंने जल में भी भगवान के दर्शन किए थे, यहां कैसी स्तुति कर रहे हैं और इन्हीं अक्रूर जी के ऊपर कैसी आफत आएगी, ध्यान देने की बातें हैं। इसलिए महाराज आप हमारे छिन्यान सुने सुत कलत्र धनाप्त गए है, बेटों में, स्त्री में, धन में, घर में, गृहस्थ में, शरीर में जो मोह रूपी एक हमारी डोरी है, एक रस्सा है जिसने हमको बांध रखा है, आप उस रस्से को काट डालिए, ये आपकी माया रूपी रस्सी ऐसी कठोर, ऐसी जकड़ी हुई है, उसमें हम फंसे हुए हैं, आपके काटे ही वो कटेगी, ऐसी कटने वाली नहीं है। भगवान ने कहा कि अक्रूर जी आप तो हमारी पूजा करने लग गए, हम तो आपके बेटा बेटी है, हम तो आपके आपसे छोटे हैं, वयम तो रक्षा पोष्याश्च, जैसे छोटे बालकों का पोषण किया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है, उनके ऊपर कृपा की जाती है, हम तो वैसे हैं, आप तो महान भाग्यशाली हैं अक्रूर जी। श्रेयस कामेर निभि नित्यम देवा स्वार्था न साधवे, ये स्वार्थ की बात तो संत महात्मा नहीं करते, देवता लोग किया करते हैं। तो देखो जो तीर्थ है, तीर्थ क्या चीज है, ये जल हो जाने से तीर्थ नहीं होता, कोई मूर्ति हो जाने से देवता नहीं होते। ये सब बहुत दिनों के बाद इनमें जब भावना होती है, अर्थात गंगा जी को हम साक्षात भगवान का चरणोदक माने, ऐसी श्रद्धा करें, कई दिन तक गंगा जी के यहां रहे और फिर श्रद्धा बने, तब वो हमको पवित्र करती है। ऐसे ही जो मूर्ति है, उस मूर्ति में जब हमारी भावना होती है तब जाकर के मूर्ति हमारा कल्याण करती है। तो इसमें समय लगता है, लेकिन आप जैसे संत महात्मा तो दर्शन देने मात्र से कल्याण कर दिया करते हैं, इसलिए आप तो अपने दर्शनों से हमको बहुत सुख दिए है, बड़ा आनंद दिया है। अब एक हमारा काम आप कर दीजिए। क्या महाराज? आप तो मथुरा में आप विराजमान हैं और हमको आप काम करने के लिए बाहर भेज रहे हैं, आपका वियोग होगा ना। तो देखो भगवान ये बात क्यों कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, भगवान के मन में ये बात है कि उद्धव जी, आप जब कंस की बात मानने के लिए ब्रज में आए तो अब आपको हमारी बात मानने के लिए हस्तिनापुर जाना पड़ेगा। हमारे आत्मीय जो पांडव लोग हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है उसको तुम जाकर देखो, और जो कुछ पांडवों के साथ अन्याय देख रहे हो उसको देख करके धृतराष्ट्र को समझाओ। बेचारे पांडु के मर जाने के बाद उसके बेटों के साथ हमने सुना है कि धृतराष्ट्र न्याय नहीं कर रहा है, वह अपने बड़े बेटे के साथ में पक्षपात कर रहा है और पांडु पुत्रों के साथ अन्याय कर रहा है। समो न वर्तते नूनम, वह समानता का बर्ताव नहीं कर रहा है। इसलिए जाओ, तुम हमारे कहने से नहीं, वहां जाओ और पहले देखो, और देखने के बाद फिर हमको बताओ, और बताने के बाद में फिर कोई आगे उपाय किया जाएगा। अब अक्रूर जी महाराज भगवान से आदेश लेकर वे हस्तिनापुर के लिए रवाना होते हैं। इधर भगवान बलराम जी को और उद्धव जी को लेकर अपने महल में पधारकर वहां पर विराजमान हो जाते हैं। अब आगे अक्रूर जी महाराज भगवान के आदेश से हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर में अक्रूर जी का बहुत विलक्षण स्वागत किया गया। धृतराष्ट्र है, भीष्म है, विदुर जी है, कुंती है, इन सब से वे प्रेम से मिले। कई दिन तक उन्होंने वहां धृतराष्ट्र का व्यवहार कैसा चल रहा है इसको उन्होंने जान लिया। प्रजानुरागम पार्थेशु न सहद्विश्चिकीर्षितम, लेकिन अपने दुष्ट पुत्र के सारे अपराधों को वह धृतराष्ट्र सह रहा था, परंतु पांडवों में बढ़ता हुआ जनानुराग उसे सहन नहीं हुआ। अक्रूर जी को इस बात की भी जानकारी मिल गई कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने किस प्रकार भीम को जहर दिया था, लाक्षागृह में जलाने की तैयारियां की गई थी, ये सब बातें अक्रूर जी सुन लिए। अक्रूर जी जिस वंश में पैदा हुए थे उसी वंश में प्रथा भी पैदा हुई थी, माने कुंती भी उसी वंश में जन्म ली थी, अतः अक्रूर जी को बड़े प्रेम से कुंती कहने लगी कि हे अक्रूर जी, कभी कभी पीहर वाले ससुराल में बेटी के साथ क्या हो रहा है, ऐसा यदि विचार नहीं करेंगे तो ये कहां जाएगी। कृष्ण मेरे भाई का लड़का है, सर्वशक्तिमान है, भक्तवत्सल है, शरणागतों की रक्षा करने वाला है, क्या वो हमारी इस विपत्ति को जानता है? मैं यहां हस्तिनापुर में कैसी कैसी विपत्ति देख रही हूं, ये बात क्या उससे छिपी हुई है? नहीं छिपी हुई है, फिर भी वे कब आकर मुझे आश्वस्त करेंगे मुझे पता नहीं। मेरे बालकों पर कैसा ये संकट का समय है, पिता इनके हैं नहीं, धृतराष्ट्र इनके साथ अच्छा व्यवहार करता नहीं, वह अपने पुत्रों के प्रेम में फंस गया है, मेरे बालकों की बहुत दुर्दशा हो रही है। हे कृष्ण, हे महायोगिन, मैं आपकी शरण में हूं, पुत्रों सहित मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए, मृत्यु रूपी संसार से छुटकारा दिलाने वाले हे प्रभु आप ही है। नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणंगता, मैं आपकी शरण में हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जगदीश्वर श्री कृष्ण को इस प्रकार से प्रथा ने प्रणाम किया। अक्रूर जी महाराज कई दिन तक वहां रहे। वैसे अक्रूर जी सुख और दुख में सम रहने वाले थे और विदुर जी भी ऐसे ही सम थे, इसलिए उन्होंने कुंती को सर्व तरह से आश्वासन दिया और कुंती को यह समझा दिया कि देखो तुम्हारे बेटा ही सामान्य बेटा नहीं है, तुम्हारी जो ये संतानें हैं इनकी उत्पत्ति का एक बहुत बड़ा कारण है, स्वयं धर्मराज ने तुम्हारे यहां जन्म लिया है, स्वयं वायु ने तुम्हारे यहां जन्म लिया है, तो धर्म है, वायु है, इंद्र है, इनकी संतानें हैं, तुम्हारे संतानें सामान्य संतान नहीं है, इनके द्वारा बड़ा भारी उपकार होने वाला है, आप कोई चिंता न करें। तरह तरह से उनको समझा दिया। कई दिन वहां रहने के बाद अक्रूर जी ने सब प्रकार से वहां का अध्ययन कर लिया, तो वे जाने की तैयारी करने लगे और धृतराष्ट्र के महल में गए। धृतराष्ट्र के भाई बंधुओं के और मित्रों के बीच में अक्रूर जी ने साफ साफ बात कही कि हे धृतराष्ट्र, आप कुरुवंश की कीर्ति को बढ़ाने वाले हो, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पांडु की मृत्यु के बाद आपको ये राज सिंहासन मिला है, आपके लिए बड़ा अच्छा समय है कि आप प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करें, सबके साथ समानता का बर्ताव करें, ऐसा करने से आपकी इस लोक में और परलोक में कीर्ति फैलेगी और यदि आप विषमता का बर्ताव करेंगे तो आपको नरकों में जाना पड़ेगा। मैं इतने दिन यहां रहा हूं, मैंने ये देखा है कि आप पांडवों के साथ और अपने बेटों के साथ घोर पक्षपात कर रहे हैं, आप पांडवों को उन्नति के रूप में देखना नहीं चाहते हैं और अपने बेटों को आप बहुत ज्यादा हृदय से चाह रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। देखो महाराज, याद रखना चाहिए कि यहां संसार में कुटुंब के बीच में ज्यादा दिन हमको रहना नहीं है, जब शरीर ही हमारा नहीं रहेगा तो फिर शरीर के बेटा बेटी क्या हमारा साथ निभाएंगे, मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही पाप पुण्य करता है और अकेला ही उसका फल भोगता है, आप अपने साथ में कईयों को मान रहे बड़ी भारी भूल कर रहे हैं, अधर्म से उपार्जित धन के अंदर बहुत से लोग मीठी मीठी वाणी बोल करके हिस्सा बटा लेंगे, परंतु हे महाराज, जिस अधर्म के फल से आपको नरक मिलने वाला है उस अधर्म में कोई हिस्सा बटाने वाला नहीं है। ते अकृतार्थम प्रहिण्वन्ति प्राणाराय सुतादय, आज आप जिनको बहुत ज्यादा पाल रहे हो, पोस रहे हो, अधर्म के द्वारा जिनका पक्ष ले रहे हो, जब इन्हें पता चलेगा कि अब हमारे पिता से हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो सकता है, तो ये सब आपको छिटका देंगे। क्या आप यहां पाप बटोरने के लिए आए थे? स्वधर्म विमुख है, क्या आप अपने धर्म से विमुख होकर के यहां से जाएंगे? ये संसार तो महाराज एक स्वप्न के समान है, अपनी कल्पनाओं से हम देखते हैं संसार को, अच्छा है बुरा है भावना के अनुसार देखते हैं। इसलिए आप संयम रखो अपने मन का और धर्म के अनुसार आप काम करो। समय शांतो भव प्रभो, आप सब के साथ समानता का बर्ताव करो और प्रेम का बर्ताव करो। धृतराष्ट्र कहने लगे कि अक्रूर जी आपकी बात तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी बात सुनते सुनते तृप्ति तो नहीं होती है, जैसे अमृत को पीने से न होवे वैसी बात है आपकी, लेकिन मेरे हृदय में बहुत देर तक आपकी बात ठहरती नहीं है। पुत्र के अंदर इतना मेरा प्रेम है, आकाश में बिजली ठहरे तो आपकी बात मेरे हृदय में ठहरे। भगवान का कोई ऐसा ही विधान है, हमने सुना यदुवंश में जन्म लेकर वे पृथ्वी का बहुत बड़ा भार हल्का करने वाले हैं, वे ही भगवान माया से संसार बनाते हैं और अपने में लीन करते हैं, वे ही भगवान अब हमारी बुद्धि को ठीक करेंगे और वे चाहेंगे जैसा ही होगा, अब हमारे करने से क्या होगा। तस्मै नमो दुरवबोध विहार तंत्र संसार चक्र गतये परमेश्वराय, उनका अवतार किस कारण से हुआ हम नहीं जान सकते, संसार रूपी चक्र को भी गति देने वाले प्रभु उनको मैं नमस्कार करता हूं। अक्रूर जी समझ गए कि ऐसे को ज्ञान देना व्यर्थ है, जब उसका कसूर बताया जाए तब तो भगवान पर रख दे, और यूं भगवान की बात को माने ही नहीं। अक्रूर जी वहां से लौट आए और आकर के उन्होंने मथुरा में भगवान से निवेदन किया कि महाराज धृतराष्ट्र की ऐसी ऐसी चेष्टाएं हो रही है, पांडवों के प्रति जैसा व्यवहार किया वो सारा व्यवहार उन्होंने जान लिया, और भगवान ये सब देख करके कि अब मुझे क्या करना है अपने मन में विचार कर लिया और वे उसी उद्योग में लग गए। अब इतनी देर तक तो भगवान की माधुरी लीलाओं को सुना था, बहुत भगवान ने मक्खन खा लिया, बांसुरी बजा ली, उछल कूद कर ली, अब भगवान की दूसरी ऐश्वर्य पूर्ण लीलाएं जरा उधर भी अपने को चलना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कंस की दो स्त्रियां थी, एक अस्थि और एक प्राप्ति, ये दोनों के दोनों अपने पिता के पास में गईं जरासंध के पास, जोर जोर से रोने लगी विलखने लगी कि कृष्ण के द्वारा हम विधवा हो गई हैं। जरासंध को बड़ा क्रोध आया, शोक भी हुआ और क्रोध भी आया, हमारे जवाई को मारने वाला कृष्ण मथुरा पर कब्जा करके बैठ गया है, बड़ा उसे क्रोध आया और बहुत बड़ी सेना लेकर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर उसने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध हमारे अवतार का काम पूरा कर रहा है, यह अक्षौहिणी सेना के बहाने से पापियों को इकट्ठा कर रहा है, बड़ी अच्छी बात है, इसके साथ युद्ध करना चाहिए। भगवान ने उस समय में ये विचार कर लिया कि इस जरासंध को तो मारना नहीं है और सेना में से किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जरासंध फिर और सेना को इकट्ठा करेगा और फिर उसके साथ में हम युद्ध करेंगे और पापियों का नाश होगा, और यही काम करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। भगवान ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में ही दो दिव्य रथ आकाश से नीचे आए, सब प्रकार के अस्त्रों से वे सुसज्जित थे। भगवान ने बलराम जी से कहा कि बड़े भाई एक रथ पर आप बैठिए, एक रथ पर मैं बैठता हूं, अब आपका और मेरा जन्म जिस बात के लिए हुआ है वो कार्य पूरा करना है। यह 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आया है, पृथ्वी का भार है, इसको हटाइए। दोनों के दोनों रथ में बैठ गए और रथ में बैठ करके बड़े तेजी के साथ उसको मथुरा के दरवाजों से बाहर ले गए, और जो ही भगवान बाहर ले गए उन्होंने अपना पांचजन्य शंख था वो शंख बजाया, शंख बजा करके उन्होंने शत्रुओं को शत्रुओं का आह्वान किया। शंख के सुनने से ही शत्रुओं के हृदय कांपने लग गए। भगवान का रथ जरासंध के सामने गया। जरासंध ने बलराम श्री कृष्ण को देख करके कहा, अरे भाई, आप लोग लड़ाई करने के लिए आए हो या कोई तमाशा करने के लिए आए हो? गुप्ते नहीं त्वया मंदा न योत्से या ही बंधुहन, तुम दोनों आए हो तो बड़े सुंदर, किसके साथ युद्ध किया जाए बताओ? ये कृष्ण तो बहुत छोटा है, इसके साथ क्या लड़ाई करे? बलराम, तुम यदि लड़ना चाहो तो हम तुम्हारे साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा, देखो, यहां बाणी चलाने का समय नहीं है, बाण चलाने का समय है। हम कितने बलवान हैं, तुम कितने बलवान हो, इसका निर्णय हमारी जिह्वा नहीं करेगी, वाणी नहीं करेगी, हमारा बाण करेगा। इस प्रकार से वे जरासंध के सामने खड़े हो गए। जरासंध की सेना बड़ी विचित्र थी और वे सेना के अंदर बड़े वेग से अपने रथ का ओर ले गए और सेना का संहार करने लगे। भगवान जिस समय मथुरा से रवाना हुए थे, उस समय में मथुरा वासियों ने अपने महलों के झरोखों से भगवान के रथ को दूर तक जाते हुए देखा और आगे जाकर देखा कि सेना के अंदर दोनों लीन हो गए हैं, तो उनके मन में बड़ी घबराहट हुई। इधर भगवान इतनी फुर्ती से सेना का संहार करने लगे कि हाथियों के मस्तक कहीं गिरे हुए हैं, घोड़ों की टांगें कहीं पड़ी हुई है, टूटे हुए रथ एक किनारे पड़े हुए हैं, पदाति सैनिक है उनके हाथ भुजाएं और धड़ कटे हुए कहीं पड़े हुए हैं, खून की वहां पर नदी बह रही है। वो नदी ऐसी है कि खून तो है पानी, सेनाओं के सैनिकों के जो भुजाएं हैं वो है सर्प, मनुष्यों के जो सिर है वो है कछुए के समान। ऐसे ऐसे वहां पर बड़े बड़े योद्धा धराशायी होने लगे और जब सबको मारते मारते बलराम श्री कृष्ण ने जरासंध को घेर लिया, तब उस समय में उछल करके बलराम जी ने जरासंध को पकड़ लिया और पकड़ करके उस दुष्ट को जो है वो मूसल से मारने लगे। इतने में ही कृष्ण भगवान आ गए और कहने लगे कि भैया ऐसा मत करो, इसको मारो मत, इसको जीवन दान दे दो, हमारे कहने से आप इसे छोड़ दो। बलराम जी का इतना तेज क्रोध था, उन्होंने उसे वहीं पकड़ लिया, जोर से धक्का देकर उसको धूली दूषित कर दिया, जमीन पर पटक दिया और जरासंध वहां पर हार गया। कहते हैं जरासंध पराजित हुआ हुआ है। बलराम जी ने कहा कि जाओ, कृष्ण के कहने से हमने तुमको प्राण दान दिया है, जाओ, अब तुम्हें जहां भी जाना है चले जाओ। जरासंध ने देखा कि मुझे ये मुसल से मार देता तो बड़ा अच्छा था, ये पराजित होकर जीना ये मेरे लिए महान कलंक की बात है, किस मुंह से मैं अपने देश में जाऊं। उसने विचार किया कि चलो अब चले जाएं, तपस्या करेंगे, अब युद्ध वगैरह नहीं करेंगे, बहुत हो गया हमारा युद्ध। इतने में ही कई राजा लोग मिले, कहने लगे क्या कर रहे हो, युद्ध करते हो, कोई जीतता है कोई हारता है, इसमें घबराने की क्या बात है? स्वकर्म बंध प्राप्तोयम, अपने कर्म फल से कभी विजय मिलती है तो कभी हार मिलती है, अब हार मिल गई तो मिल गई, यदुवंशी जीत गए तो जीत गए, फिर प्रयत्न करेंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस प्रकार से जरासंध को वे अपने राजधानी में ले गए। और इधर भगवान जब सारी सेना का नाश कर दिए और अपने भाई के साथ जब वे वापस इस मथुरा के अंदर प्रवेश किए हैं, उस समय में मथुरा वासियों ने दुंदुभियां बजाई है, फूलों की वर्षा की है, वीणा वेणु मृदुंगानी, बड़ी बड़ी मृदंग बजाए, वीणाएं बजाई है, सारे मार्गों को उन्होंने सजाया है, मार्गों पर सुगंधित पदार्थ है वो उन्होंने छिड़क दिए हैं, अपने अपने घरों को सबने पताकाओं से सुसज्जित कर दिया है और सभी ब्राह्मण वगैरह वेद मंत्रों का विजय श्री का उद्घोष कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, स्त्रियां अच्छे अच्छे वस्त्र पहनी हुई भगवान का स्वागत कर रही है। निरीक्षमाण सस्नेहम प्रेत्युत्कलित लोचन ही, और वे भगवान को बड़े प्रेम के साथ देख रहे हैं, क्योंकि भगवान विजयी होकर आज मथुरा में प्रवेश किए हैं। इस प्रकार से भगवान एक बार नहीं 17 बार इस 23 अक्षौहिणी सेना पर विजय प्राप्त किए हैं और 17 ही बार भगवान की कीर्ति मथुरा में और दूसरी सब जगह फैली है। एक बार की बात है, काल यवन नाम का एक यवन था, उसने नारद जी से पूछा कि नारद जी ये विष्णु कौन है, कहाँ रहता है? कहने लगे आजकल तो वो मथुरा में रहता है। उसका स्वरूप क्या है? कैसे बता दिया, 4 उसकी भुजा है, शंख चक्र गदा धारण करता है, मोर मुकुट धारण करता है, बड़ा सुंदर कुंडल है, मुकुट है, अंगद है, करधनी है, पीताम्बर पहनता है, अपीच्य दर्शन है, इस प्रकार से भगवान का रूप बता दिया। तो वो कालयवन देखा कि मथुरा में है, चलो मथुरा पर आक्रमण कर दे। अब वो मथुरा पर 3 करोड़ म्लेच्छों को लेकर चारों तरफ से घेर करके बैठ गया। इधर 18वां संग्राम होने वाला था जरासंध के साथ, वो भी 2-4 दिनों में आने वाला था। भगवान ने देखा कि और दो दो तरफ के युद्ध के मोर्चे खुलेंगे, तो भगवान ने बलराम जी को बुलाकर उनसे विचार विमर्श किया कि आज अब यदुवंशियों पर बड़ी भारी विपत्ति आ रही है। कालयवन तो आ ही गया है और मागधो प्यद्यवा श्रोवा परश्रोवा, आजकल परसों में ये जरासंध भी आने वाला है, इसलिए अपने लोगों को पहले से ही प्रजा को बचाना चाहिए। तस्माद अद्य विध्यास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम, ऐसा एक किला बना दो जिसमें हर कोई आदमी जा न सके और वो आज का आज बन जाना चाहिए। कि किसके लिए क्या करे, इसके लिए उन्होंने त्वष्ट्रा को याद किया। त्वष्ट्रा आए और समुद्र के अंदर एक बहुत सुंदर नगरी बसा दी गई एक ही दिन में। त्वष्टा ने कई प्रकार से अपने विज्ञान के द्वारा उसे बनाया, ज्ञान कौशल के द्वारा उसे बनाया। बड़े लंबे चौड़े वहां पर चौराहे हैं, मार्ग है, ऊंचे ऊंचे महल हैं, बगीचे हैं और महलों के ऊपर तरह तरह से पताकाएं फहराई हुई है। रत्नकूटैर गृहैर हेमैर महामरकतस्थलैः, और महामरकत मणियों से फर्श है वो जड़ी हुई है। रत्नों को माना घरों के सजाने में भरी दिया है, ऐसे सुंदर घर बनाए। चारों वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियां बना दी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब अपनी अपनी बस्तियों में रहने लगे, ऐसा बना दिया। और इंद्र ने वहां पर कल्प वृक्ष लाकर रख दिया, सब प्रकार से वहां पर आनंद हो गया। कहते हैं यत्र चावस्थितो मर्त्यो मर्त्य धर्मे न युज्यते, ऐसी विलक्षण वहां शोभा थी कि वहां किसी की मृत्यु होवे नहीं। माने जो मृत्यु के प्रभाव है वो उस द्वारिका के अंदर किसी प्रकार से होवे नहीं, ऐसा वहां पर वातावरण था। वरुण देवता ऐसे ऐसे घोड़े लेकर आए जिनके एक कान श्याम वर्ण वाले थे। 8 निधिपतियों ने बहुत बड़ा वहां पर कोष भर दिया। भगवान यद्यद् भगवता दत्तम आधिपत्यम स्वसिद्धये सर्वम प्रत्यर्पयामासुर हरौ भूमिगते नृप, भगवान यहां अवतार लेकर के पृथ्वी पर आए हुए थे, इसलिए भगवान के लिए जो जो कुछ वहां पर अपेक्षित था सब तैयारियां पूरी हो गई। इस प्रकार से जब सब लोग वहां रहने लग गए और सबको वहां पर भेज दिया, एक ऐसा मार्ग बनाया कि जिस मार्ग से योग के प्रभाव से बहुत जल्दी मथुरा वाले द्वारिका में जाकर रहने लग गए। तब इधर भगवान बलराम जी को साथ में लिए हुए, नहीं प्रजापालेन रामेण कृष्ण समनुमंत्रित है निर्जगाम पुरा पुरत द्वारा पद्ममाली निरायुध है। कहते हैं अब भगवान वहां से रवाना हुए, रवाना होकर के वे मथुरा से बाहर आए, मथुरा के बाहर आए। और जो ही मथुरा के नगर से बाहर आए तो अब कालयवन ने श्री कृष्ण का स्वरूप देखा कि ओहो कैसा विचित्र रूप है, जैसे कोई चंद्रमा उदित होता हो आकाश में, ऐसे मथुरा रूपी आकाश से ये कृष्ण रूपी चंद्रमा उदित हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। पीताम्बर इसने पहन रखा है, श्रीवत्स का इसके चिन्ह है, कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है और लंबी लंबी इसकी 4 भुजाएं हैं, इसके कपोल है हरदम मुस्कुराहट के कारण से बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुखारविंद पर मकराकृति कुंडलों की आभा पड़ रही है, यही वासुदेव होना चाहिए। नारद ने जो जो लक्षण बताए थे वो सारे लक्षण इस पुरुष में दिख रहे हैं। यही चार भुजा वाला कमल नेत्र वनमाली अति सुंदर श्री कृष्ण है। ऐसा विचार करके निरायुधस चलन पद्म्याम, भगवान के पास शस्त्र नहीं तो उसने भी शस्त्र छोड़ दिया और भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगा। आगे आगे श्री कृष्ण है, पीछे पीछे कालयवन है। बहुत दूर तक दौड़ते गए, दौड़ते दौड़ते उसने देखा कि अब पकड़ा, अब पकड़ा, अब पकड़ा, लेकिन कभी तो एक हाथ की दूरी रह जाए और कभी और थोड़ी दूरी रह जाए, ऐसे अब मैं पकड़ लूंगा, अब पकड़ लूंगा, इस आशा से भगवान उसको बहुत दूर ले गए। देखो परीक्षित, बड़े बड़े योगी लोग अपने मन से भगवान के पीछे नहीं दौड़ सकते, ऐसे भगवान के पीछे ये कालयवन दौड़ रहा है और मैं प्राप्त कर रहा हूं, प्राप्त कर रहा हूं, ऐसी भावना उनके हो रही है। जब बहुत दूर भगवान ले गया उसको, तब वो बोला है, अरे तुम विष्णु हो, तुम यदुकुल में पैदा हुए हो, हमने तो तुम्हारा बहुत पराक्रम सुना था, तुम हमारी लड़ाई को छोड़कर भगना क्यों उचित समझ रहे हो? सच पूछा जाए, हे परीक्षित, आज इस काल यवन के जितने जन्म जन्मांतर के पाप थे वो भगवान के पीछे दौड़ने से समाप्त हो गए थे। प्राविशाद गिरिकंदरम, और इतने में भगवान तो कुछ बोले नहीं और एक पर्वत की गुफा के अंदर प्रवेश कर गए, और वहां पर प्रवेश करते ही भगवान तो अपने को अदृश्य कर लिए, और वो काल यवन भी पीछे पीछे उस गुफा में गया। वहां एक सोए हुए पुरुष को देखा और जाकर के वो हल्ला करने लगा कि हां, पहले तो इतनी दूर डर करके तुम भग आए और यहां सो करके हमको छलना चाहते हो? ऐसा कहकर के उस मूर्ख ने जोर से लात लगाई और जोर से सोए हुए उस पुरुष के लात लगाई। इतने में वो मनुष्य जग गया। जगते ही उसकी दृष्टि जो ही उस काल यवन पर पड़ी, काल यवन देखते देखते ही धू धू करके वहां पर जलने लग गया। परीक्षित पूछ रहे हैं कि महाराज, ये कौन सा पुरुष था कि जिसके दृष्टिपात होते ही वो जलने लग गया? कहते हैं, हमने तुमको नवमे स्कंद में एक कथा सुनाई थी ना मानधाता, कि जो युवनाश्व का बेटा था जिसने एक बार यज्ञ करवाया था पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वहां रात्रि में उसने जल पी लिया था। अभिमंत्रित जल पीने के कारण से जो बेटा स्त्री के होना चाहिए था वो बेटा उसके हुआ। तब इंद्र ने कहा कि भाई, ये मानधाता मुझे धारण करेगा। तब उस मानधाता का बेटा मुचकुंद हुआ। एक बार देवताओं के असुरों के संग्राम में देवता लोग जब हारने लगे, उनका कोई सेनापति नहीं था, तो इस मुचकुंद को सेनापति बनाया। मुचकुंद देवताओं के पक्ष में दैत्यों से बहुत लड़े और लड़ते लड़ते असुरों के छक्के छुड़ा दिए। इधर थोड़े दिनों के बाद भगवान कार्तिकेय का जब जन्म हुआ, तब देवताओं ने कहा कि राजन, अब आप आराम करो, बहुत आपने हमारे पक्ष में युद्ध किया है, अब ये शंकर नंदन कार्तिकेय हमारे सेना के सेनापति हैं, असुरों के साथ दैत्यों के साथ ये लड़ेंगे, और तुमने हमारे साथ में जान की भी परवाह नहीं की है, बहुत विलक्षण युद्ध किया है, हम तुमको वरदान देने के लिए तैयार है, तुम कोई भी वरदान मांग सकते हो। एक बात है, कोई भी वरदान मांगो तो मांग लो, लेकिन कल्याण का वरदान मत मांग लेना, मुक्ति करना हमारे हाथ की बात नहीं है, यह केवल भगवान ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, और कोई वरदान मांग लो। मुचकुंद जी ने कहा कि अब जाकर के क्या करूं, मेरे भाई बंधु तो कोई अब है नहीं, और आपने वरदान के लिए कहा है तो मैं एक ऐसी जगह मुझे सुला दो कि मैं एकांत में सोता रहूं, नींद लेता रहूं। क्या अच्छी बात है, हम आपको बोलते हैं कि आप आराम से सोते रहोगे और जो आपको जगाएगा उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही वो जगाने वाला नष्ट हो जाएगा। अब इधर कालयवन नष्ट हो गया, कालयवन के नष्ट होते ही गुफा में अव्यक्त रूप से छिपे हुए भगवान मुचकुंद के सामने प्रकट हो गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आहा, कितना दिव्य भगवान का रूप है, वे घनश्याम भगवान पीताम्बर पहने हुए है, श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि उनके गले में विराजमान है, चार उनकी भुजा है, वनमाला उनकी बहुत नीचे तक लटक रही है, प्रसन्नता से वे देख रहे हैं, मकराकृति कुंडल फड़क रहे हैं और लोगों के लिए बड़े दर्शनीय है। छोटी उनकी अवस्था है, मानो कोई मदोन्मत्त हाथी हो अथवा मदोन्मत्त कोई सिंह हो, इस प्रकार से उनकी चाल है। बहुत सुंदर भगवान का रूप देख करके राजा मुस्कुंद पूछने लगे कि हे पुरुषश्रेष्ठ, इस भयंकर जंगल में और इस गुफा में आप यहां पधारे हैं, इन कोमल चरणों से क्या आपके चरणों में कोई पीड़ा तो नहीं हुई? आपका क्या परिचय है? आपके शरीर से निकलने वाले तेज से ऐसा लगता है कि आप या तो सूर्य है या चंद्रमा है या कोई इंद्र है या कोई लोकपाल है। हो सकता है ब्रह्मा विष्णु महेश में भी आप हो। हे पुरुष पुंगव, शुश्रूषताम अव्यलीकम, मैं आपकी बिना किसी रुकावट की जीवनी सुनना चाहता हूं, आपका जन्म सुनना चाहता हूं, किस गोत्र में आपने जन्म लिया है, क्या आप काम करते हैं हमको सुनाइए। यदि आप मेरे विषय में जानना चाहते हैं तो बता दूं कि इक्ष्वाकु वंश में मैं एक मुचकुंद नाम का राजा हूं और मानधाता का बेटा हूं। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण से मुझे नींद ने आक्रांत कर लिया। देवताओं से वरदान प्राप्त करके इस कंदरा में मैं सोया हुआ हूं। वो वरदान यही था कि जो मुझे जगाएगा वही भस्म हो जाएगा। इसके भस्मभूत होते ही आप यहां कैसे प्रकट हो गए? कौन है आप? आप जो भी हैं मुझे जल्दी बताइए, अपना परिचय दीजिए। आपके तेज के सामने मेरी आंखें चंदिया गई हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, और जो भी आपका परिचय हमको बताइए। भगवान हंसने लगे और हंसते हुए कहने लगे कि राजन, क्या बतावें, तुम्हारा प्रश्न बड़ा जटिल है, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं। कि क्यों? उत्तर ये, मेरा कोई एक जन्म हो तो मैं बताऊं, मेरा कोई एक कर्म हो तो बताऊं, मेरा कोई एक नाम हो तो बताऊं। हो सकता है पृथ्वी के जितने मिट्टी के कण हैं उनको कोई गिन लेवे, हो सकता है कि पृथ्वी पर जितने मनुष्य स्त्री पुरुष पशु पक्षी इन सब के जो रोम है इनको कोई गिन लेवे, परंतु मेरे जन्म को, मेरे कर्म को और मेरे गुणों को आज तक कोई गिन पाया नहीं और भविष्य में भी कोई गिन सकेगा नहीं। कालत्रयोपपन्नानी जन्म कर्माणि मे नृप, ऐसा कोई काल नहीं जिस समय में मेरा अवतार नहीं होता हो, मेरा जन्म नहीं होता हो। बड़े बड़े ऋषियों ने लिस्ट बनाना चालू किया कि कितने इसके अवतार हुए हैं, वो कोई तो 20, कोई 25, कोई 24, 24 तक लाकर को उन्होंने छोड़ दिया, आगे मेरा कोई बता ही नहीं पाया है। पहले ही पहले ब्रह्मा ने मुझे कहा था धर्म की रक्षा के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, तो मैं अवतार लेता आया। अभी भी इन दिनों में जब विशेष रूप से ब्रह्मा ने और देवताओं ने मुझे कहा तो संतों के अंदर प्रेम जगाने के लिए और असुरों के हृदय में अपना पराक्रम बैठाकर उनका उद्धार करने के लिए मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहां जन्म लिया, अतएव लोग मुझे वासुदेव के नाम से बोलते हैं। कालनेमी जो कंस के रूप में अवतार लिया था उसको मैंने मार दिया है, प्रलंबासुर और दूसरे कई असुर हैं उनको भी मैंने मार दिया है। और राजन, ये जो काल यवन अभी आकर यहां भस्म हुआ है, इसको यहां लाने का श्रेय भी मुझे ही है, मैं ही लाया हूं। और अब तुम्हारे पर विशेष कृपा करने के लिए कि तुमने अपना राज्य का सुख, परिवार का सुख, संपत्ति का सुख देवताओं के हित के लिए त्याग कर प्राणों की बलि देने के लिए भी तैयार हो गए थे, ऐसा तुम्हारा सेवा भाव मैंने देखा, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूं। राजन, वरदान मांगो, जो तुम मांगो सो देने के लिए तैयार हूं। भूयो रति न सोचे तुम, फिर तुमको आगे जाकर शोक नहीं हो, इसलिए मनचाही ही बात मांग लो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मुचकुंदो मुदान्वित है, बहुत आनंद आया मुचकुंद को भगवान की ये बात सुनकर और ये रूप देखकर। उसने भगवान नारायण को प्रणाम किया, और उसने देखा था कि एक बार हमको गर्ग जी ने कहा था वो बात सिद्ध हो गई है। अब मुचकुंद जी प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं महाराज आपकी माया से मोहित हुआ हुआ ये जीव मानव शरीर प्राप्त करके भी जिसमें कल्याण की पूरी सामग्री आप देते हैं इसको प्राप्त करके भी आपके चरण कमलों का भजन नहीं करता है और असत को अपने दिमाग में बैठाकर माने असत की प्राप्ति में लगा हुआ घर गृहस्थ के अंधे कूप में पड़ रहा है, वह सुख की प्राप्ति के लिए और दुख की निवृत्ति के लिए तरह तरह से उपाय कर रहा है, वह स्त्री और पुरुषों से ठगा जा रहा है, ऐसे में एक मैं भी हूं, मैं राजा हूं, इस अभिमान ने मुझे बहुत कष्ट दिया है महाराज। राजा तो शरीर होता है और बेटा भी शरीर का ही होता है, स्त्री भी शरीर तक सीमित रहने वाली है, इसी शरीर को मैं मेरा मान लिया, इस कारण से इसमें आसक्त होकर इतनी चिंता करने लगा कि शरीर की आवश्यकता मेरी आवश्यकता और शरीर के जन्म से मेरा जन्म, शरीर के मरने से मेरा मरण और शरीर के राजा होने से मैं राजा हो गया, ऐसा घमंड करने लग गया। बड़े अच्छे अच्छे रथों में बैठता था, हाथियों पर बैठता था, लोगों के बीच में सम्मान को प्राप्त करके मैं बहुत घमंडी हो गया, लेकिन मैं इस बात को भूल गया कि ये राज्य मेरा रहेगा नहीं, ये कुटुंब मेरा रहेगा नहीं, अधिकार मेरा रहेगा नहीं। जिस प्रकार से सर्प के मुख में आया हुआ चूहा मच्छर को खाना चाहता है, ऐसे ही काल के मुख में आया हुआ मैं संसार के भोगों से सुखी होना चाहता था। महाराज सोने के उन रथों में बैठ करके अथवा हाथियों के ऊपर बैठ करके मैं अपने को राजा पहला करके कितना घमंड किया हूं इस शरीर को लेकर जिसका कि अंत में राख होने वाली है या ये कीड़े मकड़ों के द्वारा खाया जाने वाला है। मैंने कई दिशाओं को तो जीत लिया था लेकिन अपने महल में घुसते ही मैं बालकों की मीठी मीठी वाणी से पराजित हो जाता था। स्त्री के द्वारा प्रेम भरी बातें होती उनके द्वारा मैं पराजित हो जाता था और घमंड इतना था कि मैंने सब दिशाओं को जीत लिया है। जीतना तो महाराज हमारे मन के जीतने से जीतना होता है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। यदि मन को जीत लिया तो हम जीते, मेरे मन से हार गए तो हार गए, लेकिन इस हार की जीत की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। और ऐसी मेरे मन में आई कि मैं ऐसा ऐसा यज्ञ करूं, इतने बड़े बड़े कार्य करूं कि अगले जन्म में भी मैं राजा ही बनूं। भूयेयम अहम स्वराट इति, और मैं आगे राजा बना हुआ सुख लेता रहूं, ऐसी मेरी इच्छाएं भी बढ़ती गई। अब मुझे ज्ञान होता है कि महाराज जब तक आपके प्रेमी संत महापुरुषों का संग नहीं होता है तब तक इस सृष्टि के आवागमन का जो चक्र है वो भी बंद नहीं होता है। इसलिए आपके जो संतों का संग है वही सृष्टि में आवागमन के चक्कर को रोकने वाला है।